ॐ शांति। आज हम सब के लिए कितना ही महत्वपूर्ण दिवस है। आदरणीय प्यारी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का 18वां अव्यक्त दिवस है। भारत और विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर भाई बहने उन यादों में मैं पालना जो बाबा ने दादी के द्वारा दी, मैं पालना का स्वरूप, दादी का स्नेह, दादी का हंसाता हुआ चेहरा, दादी बच्चों के साथ बाबा की तरह खेल पाल और हर प्रकार से भरपूर कर रही है, वह दृश्य सामने आ रहा है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपना पूरा उद्गार फुल फोर्स में आज के दिन ही प्रकट कर रही है। लेकिन ऐसे वातावरण में दादी पूरे ही विश्व का चक्कर लगाते हुए बाबा के बच्चों को भरपूर कर रही हैं। दादी जी के स्नेह प्यार पालना का जो रिटर्न है, हम बच्चे उतना तो दे नहीं सकते हैं जो दादी और बाबा हमसे चाहते रहे हैं। दादी का एक ही संकल्प था कि बाप को प्रत्यक्ष करें, बाप समान बने, ताकि अपनी नई दुनिया जल्दी से जल्दी आ सके। तो आज के दिन हम सब भी मन में यही संकल्प करेंगे, बाबा दादी आपने जो हम बच्चों के लिए शुभ संकल्प रखा है उसको पूरा अवश्य ही करेंगे। सबको संकल्प करना है, सबको बाबा से बात करनी है और सबको वैसा ही पुरुषार्थ करना है। तो आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 25 अगस्त 2025। बाबा ने कहा कि ड्रामा का हर सीन कदम कदम पर कल्याणकारी है, लेकिन ये कल्याणकारी उन बच्चों को महसूस होगा जो बाप की याद में रहते हैं। तुम्हें ये महसूस होगा कि ड्रामा का हर सीन किस प्रकार से कदम कदम पर कल्याणकारी है। दूसरी बात बाबा ने कही कि बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की नई नई बातें सुनाते हैं, ये बातों का कोई शास्त्र नहीं बनता है। सुना लिखा और वो लिखी हुई किताबें भी विनाश में खत्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों को हर समय खुशी में रहना है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, और उस खुशी में क्यों होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को इतना ठंडा हो जाना चाहिए, जैसे कोई अच्छी चीज मिलती है ना, बहुत ठंडेपन का अनुभव होता है, तो बच्चों को खुशी में बाप के साथ इतना ठंडा हो जाना चाहिए। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 25 अगस्त 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। आज का प्रश्न है, ड्रामा की किस मूड को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामा की किस मूड को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर है, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल क्लेमिटीज भी होगा, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होगी। विनाश कुछ भी हो जाए लेकिन बाबू बच्चों की राजधानी अवश्य स्थापन करते हैं, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कितना वीरन डाले कर नहीं सकता है। भर अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूझना नहीं है, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, ओम शांति मीठे मीठे मंगलवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे। याद प्यार तो दे रहे हैं लेकिन नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार, मीठे मीठे नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाप याद दे रहे हैं। तुम हो सब चैतन्य परवाने, बाप को क्षमा भी कहते हैं परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा को बड़ी नहीं है, रवि क्या है, एक छोटी बिंदी है, पर क्षमा कोई बड़ी नहीं है, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में है नहीं। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का भी रियलाइजेशन कराया है। आगे ये भी पता नहीं था कि आत्मा क्या है, आत्मा कहते रहते हैं लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या करती है, ये तो ज्ञान नहीं था ना। तो बाबू कहते आगे ये भी पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देही अभिमान के कारण बच्चों में भी मोह है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, देह का भान है, तो पूरी बातों में कई बातों में बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम निशान भी नहीं था, वह था वॉइसलेस भारत और अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे कि जैसे बाप समझा, जो ज्ञान बाबा देते हैं मनुष्य तो ऐसे दे नहीं सकते। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था। बाबा कहते मैंने आज से 5000 वर्ष पहले इनको शिवालय बनाया था, और तो कोई नहीं कहेगा ना, ये ज्ञान तो बाबा ही बता सकते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने भी शिवालय स्थापन किया था कैसे, सो तो तुम अभी समझ रहे हो, अच्छी तरह से समझ रहे ना, प्रकृति को भी और इंद्रदेव को भी, दादियों के प्यार को भी, सब साथ में समझ रहे हो, ठीक है ना। अभी विशेष भारत है, हमने इनको विश्वविद्यालय बनाया था, मैंने भी शिवालय स्थापन किया था, कैसे किया था, सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कि कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है, एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को जास्ती याद अच्छी रीति कर अपना कल्याण करना जानते। तो बाबा कहते कल्याणकारी किसको महसूस होगा, एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। ये है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का योग, बाप की कितनी महिमा है। तुम जानती हो अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है, द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते। शुरू में जब भक्ति स्टार्ट हुई तो कैसे करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, और अभी बाद में क्या हुआ, हीरे सोना मोती सब लगाते थे, बाद में धीरे धीरे फिर कहाँ तक आके पहुंचे, चांदी पर आ गए, चांदी के बाद फिर मिट्टी पर आ गए ना। तो पहले पहले तुम भी हीरों का लिंग बनाकर पूजा करते हो, अभी तुमको भी स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे, ये चित्र तो अभी मिल न सके, यहाँ तो ये लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं, जैसे पुजारियों को भी मान देखो कि कितना है, अच्छा सा शिवलिंग बनाएंगे पूजा करेंगे तो उनको भी मान मिलता है। शिव की पूजा तो सब करते हैं लेकिन औपचारिक पूजा तो है नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं, विनाश भी आने का है जरूर, तैयारियां भी हो रही हैं, नेचुरल क्लेमिटीज का भी ड्रामा में मूड है, कोई कितना भी माथा मारे तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, कोई की भी ताकत जो नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन होनी है, कोई कितना भी विघ्न डाले, बाबा कहते कोई की ताकत ही नहीं है कि जो इसमें कुछ कर सके, राजधानी तो स्थापन होनी ही है, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी है, कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके, बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होती रहेंगी, है ये है बहुत बड़ी कमाई, कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। बच्चों की अवस्था कैसे ऊपर नीचे होती है तो बाबा वो सारा बता रहे हैं, कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे, यात्रा में भी तो ऊपर नीचे होते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने में बहुत खुशी रहती है, ओहो बाबा आप हमको पढ़ा रहे हैं, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, कभी तो बहुत खुशी होगी, कभी भूल जाएंगे तो कभी याद नहीं रहेगा, कभी अवस्था ऊपर नीचे होती है ना। तो बाबा कहते हैं क्या होता है, तो बाबा वो सारा बता रहे हैं बच्चों की अवस्था का। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है क्योंकि भगवान वाच्य है ना, परंतु ये किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। भल कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं कि गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, कब आकर क्या किया, ये सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, ड्रामा में ये सब नूंद है, भूलेंगे फिर बाबा आएंगे, बाबा समझाएंगे, तो बाबा कहते सब बातें ड्रामा में नूंद है, ये रावण राज्य फिर भी होगा और हमको भी आना पड़ेगा। बाबा बताते रावण राज्य होगा, बाबा को भी आना पड़ेगा, फिर रावण को भी समाप्त करना पड़ेगा, ये रावण राज्य फिर भी होगा, हमको आना होगा, रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधेरे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है, सिवाय बाप के और कोई सदगति कर न सके, सर्व का सदगति दाता एक ही है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्राय लोप हो गया, ऐसे नहीं कि ये ज्ञान कोई परंपरा से चलता आया है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं होते। गीता का ज्ञान प्राय लोप हो जाता है लेकिन उनके शास्त्र जो है ना वो विनाश नहीं होते हैं। तुमको तो जो ज्ञान अभी से देता हूँ इनका कोई भी शास्त्र नहीं बनता है जो परंपरा अनादि हो जाए। बाबा कहते शास्त्र बने तब तो परंपरा चले, बनता ही नहीं शास्त्र जो ये ज्ञान अनादि परंपरा हो जाए। जो परंपरा अनादि हो जाए ये तो तुम लिख सकते हो फिर खत्म कर देते हो। बाबा ने पहले भी कितने शिव के यज्ञ की स्थापना में बहने कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखती थी, फूल के फूल किताबें लिखती थी। जब यहाँ भारत आना हुआ तो बाबा को पूछा, बाबा ये क्या करे, इतने बुढ़िया थी, इतने किताबें थी, अब इसको क्या करे। बाबा ने कहा, बाबा तो रोज ज्ञान देते ही रहते हैं, तो फिर क्या किया बाबा ने कहा, इनको एक बहुत बड़े ट्रंक में डाल करके और सब के सब जमीन के अंदर गाड़ दिए, और फिर विनाश होगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं ये जो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो, ये तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाए, आप तो क्या खत्म करो, विनाश में ही खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, ये ज्ञान तुमको मिलता है फिर तुम जाकर के प्रारब्ध पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं, बाबा तुमको कोई गीता पढ़ के नहीं सुनाते, बाबा तो सीधा गीता का ज्ञान देते ना, पढ़ के नहीं सुनाते। वह तो राज्यों की शिक्षा देते हैं जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं, तो अगड़म बगड़म कर देते। अब किसको कुछ दो लिखो, कुछ वो अपना ऐड करेगा, कुछ इधर का ऐड करेगा, जो ओरिजिनल बात है उसको तो छिपा ही देते हैं ना, लिखने वाले भी यही करते हैं, कुछ यहाँ की बात कुछ वहां की बात, तो वह फिर सब अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम भी बदली कर दिया है और कोई के नाम बदले नहीं हुए हैं। सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहती है कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म, कई कई ऐसे कल पर अपने अपने व्यू सुनाते, बाबा कहते इसमें आपको क्या जाना है, वो आए उन्होंने धर्म स्थापन किया तो उसमें आप अपना टाइम नहीं लगाओ। तो बाबा कहते हैं बोलो इन बातों से गीता का कोई भी तालिक नहीं है, हमारा तो काम है बाप से वसा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, ये है बड़ा झाड़ अच्छा है जैसा कि फ्लावर वास है, फ्लावर वास बनाते हैं उसमें वैरायटी फूल होते हैं चार, बहुत अच्छा होता है। तो बाबा कहते ये झाड़ कैसा है जैसे कि फ्लावर वास है, 3 ट्यूब्स निकलती हैं, कितना अच्छी रीति समय से बनाया हुआ ये झाड़ है। ये झाड़ दुनिया में कोई नहीं बना सकता है, और केवल बाबा ने ही ये झाड़ बनवाया था। जब ये झाड़ बनकर तैयार हुआ तो सभी लोग हैरान होते थे, विदेश में भी जब ये गया तो विदेश वाले भी बहुत हैरान हुए कि इतना जबरदस्त आर्टिस्ट और इतना जबरदस्त ज्ञान भरा हुआ है जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। तो बाबा कहते हैं कितना अच्छी रीति समझ से बनाया है, कोई भी झट समझ जाएंगे हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। ये दयानंद सरस्वती आदि, अरविंद घोष आदि जो अभी होकर गए हैं वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग, ज्ञान का तो नाम निशान नहीं, कितने बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, ये भी सब ड्रामा में नींद है। पढ़ना, भक्ति करना, टाइटल्स देना, बाबा कहते ये सब भी ड्रामा में नींद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष के बाद, शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला आता है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, ये तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई राज्य नहीं था, देवताओं के टाइम पर केवल देवताओं का राज्य और कोई का नहीं था। उनको सूर्यवंशी बाबा कहते हैं, और कोई का राज्य नहीं था। ये भी कहानी मिसल बताओ, जैसे कहानी सुनाते ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, वो सारे उसकी कहानी बताएंगे। तो बाबा कहते ऐसे ही हम सत्युग त्रेता द्वापर में क्या होता है, कहानी मिसल बताओ। ये भी एक कहानी मिसल बताओ, बहुत सुंदर कहानी बन सकती है। बाबा जी को प्रैक्टिस कराते थे कैसे ज्ञान सुनाना है, ज्ञान सुनाने का ढंग ऐसा हो सुनने वाले को इंटरेस्ट रहे, जैसे कोई फिल्म होती है ना, कि आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। तो बाबा भी कहते हैं वो सुनाएंगे कहानी, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, तो बहुत सुंदर बन सकती है, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग अगो 5000 वर्ष पहले ये भारत सतयुग था, कोई और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था, उनका ही सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष, फिर उन्होंने अपना राज्य दिया, बाबा तो उन्हें छीना नहीं चंद्रवंशी ने, उन्होंने अपना राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को। होता ना कि एक राजा रिटायर होने पर होता है, बूढ़ा होता है तो अपने भाई या बच्चे को देता है। तो बाबा कहते हैं उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर हमको पढ़ाया है, जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। आगे कहानी याद, बाबा किस प्रकार से ये कहानी बता रहे, कितनी सुंदर कहानी है। जो फेल हुए वह क्षत्रिय, उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी कोई लड़ाई आदि की बात नहीं, बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। बाबा कहानी सुना के फिर क्या करना है बाबा बताते हैं, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं, उनके भी चित्र हैं, शक्ल तो देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, उसकी भी कहानी बैठ बनानी चाहिए। आज बाबा की तरह ध्यान समझाने का तरीका एक कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में हो तो बाबा कहते उसकी भी कहानी बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सुनाने वाला भी ऐसे सुनाए, सुनने वाले को भी थोड़ा इंटरेस्ट रहे, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या हुआ। यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है जो इस समय आकर सारी सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज तुमको दे रहे हैं, जो तो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को भी नहीं जानते हैं, जिस ड्रामा में एक्टर हैं उनके क्रिएटर और डायरेक्टर आदि को भी नहीं जानते, ना बाबा को जानते, ना ड्रामा के क्रिएटर को जानते, ना ड्रामा के क्रिएटर ना डायरेक्टर को भी नहीं जानते। तो बाकी कौन जानेंगे, आप एक्टर होके नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे ही होगा, कहानी भी ऐसे सुनेंगे, ड्रामा अनुसार ये फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ न सके। कौन आता है, केवल बाबा के बच्चे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वाले आएंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ नहीं बिठा सकते। नया आकर के बैठेगा कि पता नहीं ये क्या बात सुना रहे हैं। बाबा के टाइम पर बाबा बैठने ही नहीं देते थे, बाबा कहते थे उनको एक तो समझ नहीं आएगा कि पढ़ाने वाला कौन है, भगवान पढ़ा रहा है वो भी वैल्यू नहीं है, फिर आके समझेंगे नहीं, तो नया को नहीं बिठाते थे। अभी तो बिठा भी देते हैं लेकिन कम बुद्धि में बैठते ना। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है, तुम्हारे में भी कोई तो जैसे कि हीरे जैसा रतन, कोई हीरा है कोई कैसा है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। रमेश भाई ने प्रदर्शनी के शुरू शुरू में थोड़े चित्र बनाए थे और रमेश भाई के साथ दादी जी तो वहाँ बॉम्बे में थे, तो दादी भी उन सबको देखते थे। जब पहली पहली प्रदर्शनी बनाए तो यहाँ बाबा के पास लाए तो बाबा को बहुत अच्छा लगा कि ये विहन मार्ग की सेवा का बहुत अच्छा साधन है। तो बाबा कहते हैं देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना, कोई पुखराज है कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। ये भी तुम जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है उसमें राजाएं रानियां सब चाहिए। तुम समझती हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है, ये बाबा तो अभी समझाते रहते हैं कि हम जाकर के बच्चा बने। आशी बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते ये ब्रह्मा को बाबा को क्या होता है, ये बाबा अभी भी समझते रहते हैं मैं अभी जाकर के बच्चा बनूंगा। कभी कभी बाबा बैठते थे श्री कृष्ण के चित्र के पास, बाबा इतना खुशी में झूम जाते, अच्छा मैं ये जाकर के मिच्छन बनूंगा, मैं जाकर के बच्चा बनूंगा। तो बाबा कहते हैं ये बाबा तो अभी भी समझते रहते हैं कि हम जाकर के बच्चा बनेंगे, बचपन की वह बातें अभी भी सामने आ रही हैं, चलनी बदल जाती है। बाबा को जैसे ही श्री कृष्ण का छोटा रूप दिखाई देता तो बाबा उस रूप में टिक जाते थे, तो बाबा की चलन भी एक्टिविटी भी वैसी हो जाती थी। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। बच्चा है छोटा है तो किशोर है, बड़ा हो जाता है तो फिर युवा अवस्था हो जाती ना। तो बाबा कहते हैं शादी किए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे, युवा अवस्था को रजो वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। श्री कृष्ण छोटा बच्चा दिखाते ना सबको बहुत प्यार रहता है, इसलिए श्री कृष्ण पर लव जास्ती रहता है। है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना मीन्स मजबूत बनना चाहिए। कुमारियां इतनी होशियार हो जाए हैं होशियार, खड़ा होना मीन्स मन से कमजोर होती है। तो बाबा को लगता था कि कुमारियां आती हैं इनको क्यों नहीं होता है कि हम अपने से जीवन को विश्व सेवा अर्थ लगाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या अधर कुमारी दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर हैं ये तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार हैं, वह जड़ है और ये चैतन्य है। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा ना, मूल वतन सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम बच्चे ही जानते हो, जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये भी समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बस खुशी में क्या होना चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी में क्या होना चाहिए। बाबा कहते बहुत ठंडे थार, जैसे खुशी होती ना हल्कापन आ जाता है, ठंडा नहीं तो टेंशन भी होता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप को याद से, बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी हैं, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है ब्रह्मा और विष्णु का भी अभी मालूम पड़ा है। विष्णु नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखलाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते, विष्णु का रूप जो दिखाते हैं क्षीर सागर में। और भक्ति में जो चित्र बनाते हैं कि विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ है, उसके नाभि से ब्रह्मा निकला। बाबा की चीज ब्रह्मा तो भी सूक्ष्म वतन में है, क्या क्या बातें सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में ब्रह्मा है यहाँ, विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा, विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि वो बच्चा हो गया। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो बाबा की तो वो तो जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। गोप गोपियां तो तुम हो सतयुग में, बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़ी होंगे। सतयुग में तो वैसे ही नेचुरल खुशी में, और संगम युग पर तुम कौन हो, गोप गोपियां तुम हो, सतयुग में थोड़ी होंगे। वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस, गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना, तो गोपी वल्लभ कौन है, शिव बाबा है, वो संगम पर ही मिलते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर सब आत्मों का बाप है निराकार शिव, ये सब है मुख वंशावली, तुम सब बीके भाई बहने हो गए, तो क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें माया बहुत हार खिलाती। बाबा पक्का कराते हैं परंतु इस सब्जेक्ट में माया बहुत हार खिलाती है। बाप कहती हैं अभी तक जो पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो, सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात का। पहले बाबा ने प्रदर्शनी पर बताया, फिर सीढ़ी का चित्र भी निर्भय भाई ने बनाया था और बाबा को बहुत पसंद आया था, थोड़ी बहुत करेक्शन भी की थी, तो बाबा ने कहा देखो इस सीढ़ी का चित्र भी बहुत फर्स्ट क्लास है, ये सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वे तो सर्वगुण संपन्न देवता है, उनका नाम गीता में दे दिया है, सांवरा भी उनको बनाया है, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते हैं, कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं, सबको काला बनाते रहते ना, तो बाबा की तो कोई हिसाब किताब तो है नहीं, रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा बन पड़ते, क्यों सांवरा दिखाते हैं उनको ये पता नहीं है, लेकिन काम चिता पर बैठने से सांवरा बन पड़ते हैं। नाम करके एक लिया, तुम सब ब्राह्मण हो अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे औरों को जगाएं, जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। बाबा दोनों बातें कह रहे हैं, जगाने का पुरुषार्थ भी करना है, युक्तियां भी निकालनी है, लेकिन जागेंगे ड्रामा अनुसार, कौन जागेंगे, वही जागेंगे जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे, जागेंगे भी ड्रामा अनुसार, ड्रामा भी बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है सदा इस स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप और गोपियां हैं। सदा इस स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति में सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। दूसरा अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन हैं, इस समिति से क्रिमिनल आई को समाप्त करना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिन्ना रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योगयुक्त बनाती है। क्या फायदे होते हैं? ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिन्ना रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योगयुक्त बनाती है। लेकिन मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनकर सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मना भव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन, आकृति को न देख निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षित मूर्त बन जाएंगे। आकृति को न देख निराकार को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अभी भी कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाएं, यही परमात्म प्यार सहज योगी बना देता है। आज हम सुनेंगे आदरणीय दादी जी की और विशेषता। ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी और निर्माणचित। ब्रह्मा बाप समान निरअहंकारी और निर्माणचित। हमारा बाबा कितना निरअहंकारी है, बच्चों को कहता है बच्चे मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ऐसी मैं भी, दादी कहती हूँ, ऐसी मैं भी अपने आप से पूछती हूँ कि मैं कहाँ तक निरअहंकारी और निर्माणचित बनी हूँ। जब ऊंची से ऊंचा बाप इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तो हमें भी कितना निरअहंकारी होना चाहिए। जब अपने को सेवाधारी समझते हो तो स्वतः ही निरअहंकारीपन की स्टेज आ जाती है। अपने को निमित्त स्वयंने से कर्म करावन हा, अपने को निमित्त स्वयंने से कर्म करावन हा, बाप स्वतः याद आता है। जब हम कहते हैं कि हम सेवाधारी हैं तो सेवाधारी माना ही हर आज्ञा पालन करने वाला फेथफुल। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जैसा कि आपको कल भी बताया था कि प्यारी दादी जी के निमित्त कल प्रातः मुरली क्लास के बाद यहाँ पर भोग लगेगा। आज दिन को शांति वन में दादी जी के निमित्त भोग है और अभी मौसम भी ऐसा है, काफी सारे भाई बहने नीचे जा रहे हैं। जिनके पास अपना गाड़ी का प्रबंध है वे तो अवश्य ही जा सकते हैं और समर्पित भाई बहनों के लिए प्रातः 9 बजे गाड़ी जाएगी और जो भी जाएंगे समर्पित भाई बहने वहां जाते पहले प्रकाश स्तंभ पर जाएंगे और उसके बाद फिर डायमंड हॉल में बैठेंगे, वहां पर दादी जी के साथ के संस्मरण सुनाए जाएंगे। 11:30 बजे प्यारे बाबा और दादी जी को भोग स्वीकार कराया जाएगा और उसके बाद जो भी जाते हैं वे ब्रह्म भोजन स्वीकार करेंगे और शाम के समय दादी जी के साथ के संस्मरण का भी कार्यक्रम है। इस प्रकार से प्रोग्राम है, प्रकृति भी अपना कार्य कर रही है लेकिन बाबा का कार्य तो सदा चलता है और चलता ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति।